चलो बोलिए।
ओम शांति।
ओम शांति।
29 दिसंबर 1981 अव्यक्त मुरली जो कल सुनाई जाएगी 20 तारीख को नवंबर मास 2016। तो 25 प्रश्न निकाले गए हैं और कुछ प्रश्न जो इसमें नहीं है वहां से चालू करते हैं। पहले किन दो चित्रों की चर्चा इस मुरली में की गई है। दो चित्रों की चर्चा इस मुरली में की गई है, कौन से वो दो चित्र हैं? दोनों ही श्री कृष्ण के ही है। कौन कौन से दो चित्र हैं?
एक श्री कृष्ण का चित्र, एक स्वर्ग वाला चित्र।
एक है गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्र और दूसरा है हाथ में स्वर्ग का गोला उठाते हुए चित्र। दोनों ही चित्रों की का क्या महत्व है? पहले तो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्र, उसका क्या महत्व बताया? कलयुग की जो समस्या है वो पहाड़ है। अगर याद की छत्र छाया है तो वो पहाड़ पहाड़ नहीं छत्र छाया हो जाएगा। और दूसरा उसी में ही अगर याद में है तो ये याद क्या करेगा? छत्र छाया का काम करेगा। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि मैं बाप की याद की छत्र छाया के अंदर हूँ? तो गोवर्धन पर्वत संसार की जो समस्या है उसकी तुलना पर्वत से की गई है, अर्थात इतनी सारी समस्या है, विशाल का है। दूसरा चित्र तो उसका क्या महत्व बताया? स्वर्ग का गोला वो चित्र देखते हो वो केवल चित्र श्री कृष्ण का नहीं है, आप सबका है। ये तो एक बात है, पर मुख्य बात कौन सी कही है? उस चित्र को देखते हो तो दिल से आवाज आती है मेरा बापा। तो नॉलेज के दर्पण को देखकर कौन सी आवाज आनी चाहिए? नॉलेज के दर्पण में इस चित्र को देखो। कौन से चित्र को? इस श्री कृष्ण के चित्र को, या फिर मैं आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देव पद धारी राज्य और राज्य अधिकारी का स्वरूप सामने दिखाई दे। जितना समीप होगा उतना स्पष्ट होगा, उतना अनुभव होगा। तो दो चित्रों की का वर्णन किया है निखिलेश भाई। प्रदर्शनी एग्जीबिशन म्यूजियम के चित्रों में क्या होनी चाहिए? जो चित्र होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए? तीन चीजें बताओ। एक तो रूहानियत, दूसरा तीन शब्द बताओ जो होने चाहिए चित्र में। एक तो रूहानियत, दूसरी चैतन्यता और तीसरा सार। सार ऐसा हो कि जो भी उसे देखे उसे सुख और शांति की अनुभूति हो, उसमें ऐसी चैतन्यता हो जैसे कोई चित्र पर कोई चीज पर सेंट छिड़का जाता है तो पूछते हैं कहां से ये खुशबू आ रही है। उसमें ऐसा सार, ऐसी चैतन्यता और ऐसी रूहानियत हो। कैसी रूहानियत? कैसी चित्रों में रूहानियत कैसी हो? जैसे मधुबन का उदाहरण, स्टॉल कैसा हो? जैसे सागर, वो जैसे साइंस वाले हैं वो अनुभव करा सकते हैं सागर का, पानी का, पहाड़ का, वैसे यहाँ आने के बाद भी उन्हें अनुभव हो कि हम सुख के स्थान पर आ गए। तो वो चित्रों में वो चैतन्यता, चित्रों में वो सार, चित्रों में वो रूहानियत कैसे आएगी? तुम्हारे वाइब्रेशन से। कैसे आएगी? ऐसा वायुमंडल, ऐसा वाइब्रेशन बनाओ कि जिससे ये रूहानियत, चैतन्यता या चित्रों में ऐसा सार भर जाए, लाइव, सजीव, जागृत हो उठे चित्र ऐसा अनुभव आत्माओं को हो। कहाँ पर? प्रदर्शनी में, म्यूजियम में, एग्जीबिशन में।
चित्र बोले या तो भगवान बोले, भगत जी कह रहे हो।
चित्र बोले, हम ना बोले, चित्र बोलने लगे, इतनी चैतन्यता उन चित्रों में भर जाए। तो ये दूसरा प्रश्न है। 25 तो निकाले हुए हैं इस चित्र में, इस मुरली में बाबा ने मधुबन के कौन कौन से नाम गिनाए हैं? पहले तो मुरली पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। मधुबन के नाम, अल्लाह का बगीचा है ये एक। दूसरा, इधर आ जी, अल्लाह का बगीचा। दूसरा, मधुबन के नाम मुरली में। हाँ, इसी मुरली में सब कुछ जो होगा केवल इसी मुरली का चाहिए, हफ्ते भर का नहीं चाहिए, आज का नहीं चाहिए, आज सुबह का नहीं, इस मुरली का जो कल आने वाली है।
उल्टा पड़ गया, जो प्रश्न उड़ाए वो नहीं है।
धोखा हो गया। प्रश्न तो अभी ये बनाए हैं, इससे आएंगे अभी दूसरे प्रश्न। पहले
इससे बाहर काम लगा।
मधुबन के नाम चलो ढूंढो, मुरली से ढूंढो, उससे भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। स्वीट होम, मेले में आए हो, अल्लाह के बगीचे में आए हो, भगवान के क्या क्या नाम है इस मुरली में वो बताओ। उसने अपने लिए क्या कहा है?
दिलाराम,
अल्लाह, दूरदेशी, दूरदेशी, दिलाराम, अल्लाह। बच्चों के कौन कौन नाम, ये तो आपने एक प्रश्न बना लिया है, उसको छोड़ो। उसके बाद दो डबल करना है, दो चीजें, दो दो होनी चाहिए, वो कौन सी? दो दो वाली दो चीजें कौन कौन सी है? नहीं, दो दो वाली दो चीजें, चलो वो हो सकता है, ब्राह्मण और फरिश्ता, फरिश्ता या देवपदधारी, ये दो चीजें, और दो चीजें मुरली से। मेरा बाबा मेरा चित्र, सेकंड, तीसरा, वो उसमें दो कहाँ है? हाँ नहीं, उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, उसमें भी दो है, स्थितियां दो है, दो स्थिति की झलक बाप दादा देख रहे हैं। पहली स्थिति है एकर स्थिति और दूसरी स्थिति है एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्थिति। तो यू आर राइट। और दो चीजें, दो चीजें, दो चीजें चाहिए, दो दो चीजें, दिल का याद और रिस्पॉन्ड। बाबा बच्चों के दिल को देखते, जैसे बाप बच्चों के दिल को देखते वैसे बाप बच्चों के दिल का रिस्पॉन्ड करते। कैसा उदाहरण दिया ये, अजीब सा। आज इस मुरली से, इस मुरली से दो चीजें,
लवली बच्चे, लवली,
लवली और लवलीन। एक है लवली शब्द का लवलीन अर्थ बताने वाला मनुष्य सृष्टि पर ये पहला ही व्यक्तित्व है, नहीं तो आज तक किसी ने लवली शब्द का लवलीन अर्थ नहीं बताया है। लवली अर्थात बाबा कह रहे हैं लवलीन आत्मा है। और लगन से क्या हो जाता है इसी मुरली से? विघ्न समाप्त हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हो, विघ्न जैसे कि खेल बन जाते हैं, खिलौना बन जाते, खिलौने से घबराते नहीं है, खेलते हैं। पार्टियों से मुलाकात, फिर से आ जाओ, दो बातें कौन सी है? आंखों का तारा और नूरे रतन। बच्चे जो है बाप के आंखों का तारा है, नूरे रतन है, बाप के गले में जो माला है उसके मन के है। और दो बातें मुरली से, दो चीजों का बैलेंस रखना है डॉक्टर लोगों को, कौन से? एक तो दो दवाइयां है, एक स्थूल दवाई एक रूहानी दवाई, दो चीजों का बैलेंस रखना है। एक तो कर्मयोगी बनाने का, कर्म भोग समाप्त कराने का, और दो चीजें,
फेथ और प्राप्ति,
फेथ और प्राप्ति, और तकदीर और तस्वीर। बाबा तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देखते हैं, और साइंस और साइलेंस। एक दिन साइलेंस झुकेगा साइंस के आगे, एटमिक और एटमिक, और
गीत और गीतों की माला,
गीत और गीतमाला वो एक ही हो गया, गीतमाला अलग जगह बोला है। बाबा सुनते नहीं है केवल, देखते नहीं है सुनते भी है। बच्चों की कौन सी गीत, तीन चीजों की गीत है, कौन से गीत, खुशी के गीत, उमंग के गीत और तीसरा प्यार के गीत, प्यार के गीत, खुशी के गीत, दिल के गीत और
दो दो बातें,
सोलह कला और सोलह श्रृंगार। कला और श्रृंगार, ये जो श्रृंगार है, अगर ये श्रृंगार यहाँ हुआ तो वहाँ स्थूल गहने मिलेंगे, यहाँ स्थूल श्रृंगार चाहिए। और ये जो श्रृंगार है सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है इस संसार का, ब्राह्मण आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है सर्वशक्तियाँ और सर्वगुण और खुशबू, खुशबू, ठीक है, रूहानी गुलाब और उसकी खुशबू। बाबा खुशबू लेने आए, बाबा झलक देख रहे हैं, बाबा गीत सुन रहे हैं और चौथा
पूरा बिजी है, अंधकार और लाइट,
अंधकार और
लाइट
और प्रकाश किरणें और दो दो बातें मुरली से,
दिल में और नैनों में,
दिल में और नैनों में, हाँ क्या कर रहे हैं दिल में और नैनों में, झलक दिल में देख रहे हैं और नैनों में देख रहे हैं, दिल और नैन,
शफा और दर्द,
शफा और दर्द, हाँ वो हो गया, तकदीर तस्वीर हो गया और सदा शफा कैसी, दो इच्छाओं में शफा कैसी चाहिए आत्माओं को, एक तो सेकंड में चाहिए, समय सरकमस्टांस प्रमाण, क्योंकि दुख दर्द बहुत है, और दूसरा सदा के लिए चाहिए, परमानेंट एंड क्विक क्यूर, दो शब्द है परमानेंट और क्विक, एक है सदा और एक है क्विक, सेकंड में जल्दी से जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र, ताबड़तोप, एज अर्ली एज पॉसिबल विदाउट एनी फर्दर डिले, विलंब, हाँ एज सून एज पॉसिबल, इमीडिएटली तुरंत, बिना किसी देरी के, हो गया और
मेरा बाबा मेरा
चित्र हो गया। और चलो अभी प्रश्न, ये प्रश्न ही थे, बीज से चालू करेंगे कहीं से भी, ये हमने पढ़े नहीं अभी तक, अभी आपके साथ ही पढ़ेंगे। नई बीमारियां क्या लाएगी, नया बीमारी, नई बीमारियां क्या लाएगी, नया परिवर्तन, कैसी बीमारियां आने वाली है कि जिसका इलाज नहीं होगा जब तक बीमारी आ जाए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में द इमर्जिंग डिसीजेस, इमर्जिंग डिसीजेस अपने आप में एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है कि जिसमें बहुत सारे, WHO ने अपनी लिस्ट बनाई है, द इमर्जिंग डिसीज इन इंडिया की लिस्ट अलग है, अलग अलग उसमें बीमारियां है कि जो आएगी, तो 81 की मुरली है ये, तब बाबा कह रहे हैं कि नई बीमारी आएगी जिनका इलाज नहीं होगा, वो इलाज आने से पहले ही बहुत सारे मर जाएंगे, अति से अंत होगा, सब जगह हर चीज की अति होगी और फिर उस अति से अंत होगा, जलाने वालों के लिए का समय नहीं होगा। तो नई बीमारियां क्या लाएगी, और क्या क्या ला सकती है, मुरली को बाजू रख दो, वैराग लाएगी, बीमारियां वैराग को जन्म देगी, इतनी बीमारियां हर एक व्यक्ति बीमार रुग्ण, प्रकृति अपना तांडव नृत्य करेगी, हिसाब किताब बाहर आएंगे जन्म जन्म के, बहुत सारी बीमारियां बाहर निकलेगी, ऐसी बीमारियां लाइलाज, इनक्यूरेबल, अनट्रीटेबल, सबके पास पाप भी भस्म होंगे और अल्फ और बे याद आएगा, इतनी बीमारियां जिसका इलाज नहीं, एक डॉक्टर हजारों पेशेंट्स, डॉक्टर भी नहीं होंगे, पेशेंट भी नहीं होंगे, ये एक दो परिस्थितियों की चर्चा है मुरली में, एक परिस्थिति है जिसमें डॉक्टर भी नहीं है पेशेंट भी नहीं है, दूसरी परिस्थिति है डॉक्टर एक है कम है और पेशेंट बहुत ज्यादा है, डॉक्टर ही बीमार होंगे, फिजिशियन हील थाइसेल्फ, डॉक्टर ही बीमार और बीमारियाँ क्या लाएगी? बीमारी आती है तो क्या होता है? बीमारी वैराग हो गया, हलचल हलचल होती है, पूरे शहर में हलचल हो जाती है, हंगामा हो जाता है, टीवी मीडिया सब जगह हलचल हो जाती है, ब्लेम ब्लेम गेम चालू हो जाता है, तुमने ये नहीं किया इसलिए हुआ, उस नेता ने ये नहीं किया इसलिए ये बीमारी है, डर पैदा हो जाता है। जैसे कहानी बताई थी ना वो परछाई वाली, छाया वाली परछाई को पूछता है सन्यासी कहाँ जा रही हो, तो परछाई कहती है प्लेग हूँ, मारने जा रही हूँ लोगों को, कितनों का मारने का हुक्म है, वो कहती है 1000 का, 500 का। वो जब आती है 1 महीने के बाद तो सन्यासी फिर पूछता है तुमने कहा था 500 को मारेंगी, पर मारा तुमने 1000 को, वो कहता है मैंने 500 को ही मारा, 500 तो डर से मर गए। तो डर पैदा होगा, एक अज्ञात, एक भय, जैसे सुबह भी चर्चा हो रही थी ना भय, उसको हो गई तो मुझे भी हो जाएंगी। किस में भरोसा कम?
भरोसा उठ जाएगा।
किस पे? डॉक्टर्स पे, डॉक्टर्स पे भरोसा उठ जाएगा। बहुत देख लिया, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। गवर्नमेंट से भरोसा, डॉक्टर से भरोसा, हॉस्पिटल से भरोसा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब। हाँ,
भगवान को याद करें,
डॉक्टर भी सोचेंगे इसके ऊपर कुछ
है, इसके ऊपर कुछ है नहीं। निश्चय की किसके? ब्राह्मणों के। निश्चय की भी परीक्षा होगी बीमारी में, और हिसाब किताब चुप तो होगा बीमारियों में। और बीमारियों में स्थिति का पता चलेगा कितना पानी में है, जो इतना ज्ञान योग जो कुछ किया, बीमारी आते ही सब उड़ जाता है। बीमारी ऐसी चीज है कि एक बार आ गई कि फिर सब एक तरफ हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है स्वभाव व्यक्ति, कुछ कुछ उसको नई नई चीजें दिखने लगती है, हेलुसिनेशंस होते हैं। हाँ वैसे ही, उसके वजह से तो बीमारी से क्या हो जाएगा, बीमारियां जब आएगी और नई बीमारी आएगी जिसके बारे में किसी ने आज तक सुना नहीं था, ऐसी नई बीमारी है जिसके लक्षण, उनका डायग्नोसिस, उनका इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रीटमेंट आने से पहले ही पेशेंट खत्म, ऐसी बीमारी है, तो ऐसा होगा। दूसरा प्रश्न, छोटे छोटे बच्चों को देख बाप को खुशी क्यों होती है? जन्म से पवित्र है और पवित्र आत्माओं का संग है, और वो संगम युग का श्रृंगार है, अभी श्रृंगार है, बाद में भविष्य में क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे, और अभी लक्ष्य रखा है, किसी ने लक्ष्य रखा है ब्रह्मा कुमारी बनने का, किसी ने लक्ष्य रखा है टीचर बनकर यहाँ से जाने का, और
महात्मा
छोटे बच्चे महात्मा होते तो छोटे बच्चे निष्पाप, निर्दोष दृष्टि, इनोसेंट, निर्विकारी और फरिश्ते होते छोटे बच्चे क्या होते हैं? ये छोटे बच्चे कितने छोटे होंगे ये एक प्रश्न है, कितने ही, क्योंकि बोला है कोई टीचर बनकर जाएगा, ऐसा बोला है उसने, एकदम छोटे भी नहीं होंगे, सब होंगे।
तो बच्चों का शिविर कब शुरू हुआ है?
ये शिविर हो गया था, शिविर 81
में।
और बच्चों में क्या होता है? ये नन्ना सा शिशु ये नहीं जानता इसे कितनी लंबी यात्रा पार करनी है, इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था, कविता है ना हरिवंश राय बच्चन की। ये नन्ना सा शिशु, इसके चेहरे पर वही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने अपने जीवन भर की साधना के बाद पाई थी। यह नन्ना सा शिशु, कविता एक, जिज्ञासा होती है बच्चों में बहुत, हर चीज जानने की, जो जिज्ञासा बाद में खत्म हो जाती है। हाँ तो वैसे ही प्रश्न चाहिए वास्तव में, ज्ञान के प्रति प्रश्न। ओह देखो आपने बोला था ना आज बच गया तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनके मन में, और इनोसेंस हो गया, और क्या गुण होता है? निश्चिंत होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती है कोई चीज की। और समर्पित शब्द वहां पर और साइंटिस्ट और निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, नादान होते हैं, इनोसेंट होते हैं, सीखने की बहुत ललक होती है उनमें, हर चीज के प्रति उत्सुकता होती है और ज्यादा मन में नहीं रखते चीजें, तुरंत भूल जाते बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं। और तो बाबा ने क्या प्रश्न बनाया, छोटे छोटे बच्चे को देख बाप को खुशी क्यों होती है, तो ये सब चीजें हैं। और उनको और चीजें कहने को करने को कही है बाबा ने, चार बातें करने को कही है, कौन कौन सी चार बातें, एक तो याद में रहना, संदेश देना, तीसरा परिस्थिति हर बात में एक रस रहना, और चौथा अमृत वेला गुड मॉर्निंग करना। सबके लिए ये, केवल उन बच्चों के लिए नहीं है। अमृत वेले गुड मॉर्निंग करना मतलब अमृत वेले उठना पड़ेगा पहले, तो गुड मॉर्निंग करना और फिर बाप को याद करना अमृत वेले, एक दूसरा बाप का संदेश सबको देना। संदेश देना मतलब केवल मुख की सेवा नहीं, वाइब्रेशंस भी, मनसा सेवा भी। उसके बाद याद करना, संदेश देना,
एक ही बात करनी, उसमें चार बातें
हो गई। उसमें चार बातें हो गई, हर परिस्थिति हर बात में एक रस, कितनी बड़ी बात बोल दी, हर परिस्थिति हर बात में एक रस रहना, एक रस स्थिति की झलक, एक बाप दूसरा ना कोई, यह झलक बाबा देख रहे हैं। छोटा बच्चों का छोटा सा काम बाबा ने दिया है, ये एक ही काम, वो भी वो एक काम दिया है, अपनी स्थिति एक रस रखनी हर परिस्थिति में, ये है छोटा काम।
छोटे बच्चों को ज्यादा काम देना पड़ता है
बाप दादा की लवली अर्थात लवलीन आत्माओं की, बाप दादा की लवली अर्थात लवलीन आत्माओं की क्या क्या निशानियां होगी, बाप दादा की लवली अर्थात लवलीन आत्माओं की क्या क्या निशानियां होगी, वो तो झलक देख रहे बाबा। लवलीन आत्माओं की मुरली में नहीं है इसका उत्तर, अगर देखा जाए तो ये चिंतन का विषय है, इसमें कुछ कुछ प्रश्न चिंतन वाले, कुछ कुछ सीधे मुरली से लिए हुए। तो लवलीन आत्माएं अर्थात लवलीन अर्थात इंग्लिश शब्द और हिंदी शब्द मिला के बना हुआ है, लव और लीन, समाया हुआ, डूबा हुआ, मर्ज हुआ हुआ, लवलीन, मगन, खोया हुआ, ऐसी आत्माओं की निशानियां। डूबे हुई आत्माओं की क्या निशानियां हैं, पहले तो यहाँ की सब बातों से ऊपर, यहाँ की बातों का असर नहीं कोई, उनका लक्ष्य सदा याद रहेगा और उपराम रहेंगे, साक्षी रहेंगे। आज भी कहा ना साक्षी, कैसा भी दृश्य हो, दर्दनाक हो या खुशी वाला हो, अनासक्त, मीठा अनासक्त तुम्हें बनना है, आज का है भगवान, मीठा भी और अनासक्त भी, मीठा भी और अनासक्त भी। अनासक्त तो बन गए तो मीठापन छूटना नहीं चाहिए, और मीठा बन गए तो उसमें अनासक्ति छूट जाती है, वैराग छूट जाता है तो दोनों ही चीज हो, अनासक्ति भी हो और मिठास भी हो। और गोपी वल्लभ की गोप गोपिया की जैसी अवस्था है वैसी अवस्था हो, लवलीन खोई हुई मगन अवस्था, जैसे बहुत सारे भक्तों की कैसी अवस्था है थी, डूबे हुए थे बस, संपूर्ण ज्ञान नहीं था फिर भी डूबे हुए थे, जैसे आज कहा ना ब्रह्म में लीन, वो ब्रह्म में लीन रहते, अरे भगवान ब्रह्म है या मैं, आज कहा ना बाबा ने, वो ब्रह्मांड को ही, वो सर्वशक्तिवान है या मैं सर्वशक्तिवान हूँ, ब्रह्मांड अखंड ज्योति, तो उसको जो कि निरा जो कि तत्व है अचेतन है, उस अचेतन तत्व की याद में इतना लीन हो जाते हैं। और यहाँ चेतन चेतना का सागर है फिर भी इतनी लवलीन अवस्था नहीं है। तो निशानियां एक तो मगन रहेंगे, वही सब शब्द तो ये, संसार से उपराम रहेंगे, साक्षी रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे यहाँ की बातों से, अनासक्त रहेंगे, बेसुद्ध। और राजीव भाई, लवली आत्माओं की निशानी, सहज ही वैरागी होंगे, प्रभु प्रेम में डूबे हुए होंगे, इनकी आंखें चेहरे में नयनों में क्या होगा, बाबा दिखाई देगा, दर्पण जैसे कल के वरदान में था ना, दर्पण में ऐसा नहीं दिखाएगा कोई पतला है तो मोटा, मोटा है तो पतला, ये नहीं, जो है वैसे है। वो उनकी स्वयं की स्थिति देही अभिमानी होगी, तो जो भी उनको देखेगा उनकी भी वैसी ही देही अभिमानी स्थिति हो जाएगी, रियल दर्पण। और मर्यादाओं में लवली इन आत्माएं, खोई हुई आत्मा, डूबी हुई आत्मा, मगन अवस्था, कुछ खबर ही नहीं यहाँ की, ना आवाज, यहाँ के व्यवहार, यहाँ की कोई बात उसको प्रभावित, आकर्षित, प्रभावित नहीं करेगी, किसी व्यक्ति का आकर्षण नहीं, किसी वस्तु का आकर्षण नहीं, एक वैराग की अवस्था प्रत्यक्ष करेंगे बाप। बाप दादा बच्चों में क्या क्या देखते रहते हैं?
बच्चों में खुशी देखते हैं,
खुशबू, गीत, झलक, तस्वीर। खुशबू, झलक, तस्वीर, गीत, चार चीजें हैं। तो कौन सी खुशबू? रूहे गुलाब जो है उनसे जो खुशबू आ रही है वो खुशबू लेने बाप आए हैं। एक झलक कौन सी? एक स्थिति की झलक, और एक बाप दूसरा ना कोई, यह झलक। तीसरा गीत कौन से? खुशी के गीत, उमंग के गीत, प्यार के गीत। और तस्वीर कौन सी? तकदीर की तस्वीर। ये चार चीजें बाबा ने कहा मैं देखता हूँ। और क्या देखते हैं? वो दूर देश से आया है, दूर देशी बच्चों को देखता है, संगम का श्रृंगार है, उनको देखते हैं। और किसको? इस ये सभा में कौन कौन बैठा है? जो यहाँ है ही नहीं वो उनको देख रहे सबसे पहले थे, जो आकारी रूप में है, जिन्होंने याद प्यार भेजी है, वैसे तो आए एक दो के लिए, परंतु उसी बहाने सबसे मिलना हो गया। परंतु विदेशियों की पसंद ही है कि एक एक से पर्सनल मिले। लास्ट पैराग्राफ। और क्या क्या देखते हैं बाबा? देखते हैं दिल को, देखते हैं
साकार में एक आया है, उसने अनेकों के दिल प्यार,
हाँ अनेकों की याद प्यार एक में देखते हैं। यहाँ जो आए हैं उनके दिल में जो नहीं आए उनकी याद प्यार है, तो उसके उसका रिस्पॉन्ड देने बाबा आए हैं। ये मुरली सुनाने नहीं आए हैं। कितना पेज होगी?
चार पेज
पूरी मुरली है। बाबा ने कहा मैं मुरली सुनाने नहीं आया हूँ, मिलने आया हूँ, और मिलते मिलते ही चार पेज हो गए।
ये तो लिखा हुआ उसके तो
नहीं नहीं इतना ही है, ये मुरली इतनी है। ये मुरली बच्चों से मिले हैं, डॉक्टर से मिले हैं, और ग्रुप मुरली पूरी है ये, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। पर वही कहा ना, बाप मिलने नहीं आए, मुरली सुनाने नहीं आए, वाणी चलाने नहीं आए, मिलने आए। हाँ तो बच्चों से, बच्चों में क्या क्या देखते हैं? तो ये सारी चीजें देखते हैं। हिम्मत से आए हैं, स्नेह है, बंधन मुक्त जो बच्चे हैं उनको देख रहे हैं, बंधनों को तोड़ कर आए हैं। हिम्मत और स्नेह, दो चीजें, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने आए, हिम्मत से आए हैं। फिर नेक्स्ट है, सदा नॉलेज के दर्पण में क्या क्या देखना है? ये चिंतन वाला विषय है, इसका उत्तर मुरली में नहीं है। नॉलेज के दर्पण में क्या क्या देखना है? ये दर्पण के विषय में बाबा ने आज तक की मुरलियों में जो कुछ कहा वो सब बताओ। दर्पण शब्द के लिए ज्ञान यदि दर्पण है तो आज की मुरली से छोड़ो, सारे दिन भर का आज का बताओ, आज सुबह की मुरली से। स्वयं से ख्याल करो, स्वयं के लिए क्या
करो, मैं क्या था,
मैं क्या था, माया ने कैसा माथा मोड़ दिया है और कैसा बना दिया, भारत क्या था, भारत क्या बन गया है, और अपने पैरों पर हथौड़ा कब मारते, कुलाड़ी कब मारते अरविंद भाई, आज की मुरली से। देखो आज का आपका टॉपिक था वही मुरली में बाबा ने याद किया आज, आज की मुरली से, हथौड़ा आपका, हथौड़ा नहीं कुलाड़ी, जो रूठ जाते हैं बाप से, बाप से रूठ जाते हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आबेल मुझे मार। और संकट मोल लेना, एक रीति से वो भी वही है,
खतरा मोल लेना,
संकट मोल लेना, टू स्टिक वंस चिन आउट, टू लुक फॉर ट्रबल, टू सीक ट्रबल, इंग्लिश में कहते हैं उसे। और कहा क्या था उसका, सदा नॉलेज के दर्पण में क्या क्या देखना है, मैं कितना मीठा बना हूँ, कितना जोर से बोलता हूँ, जोर से तो नहीं बोलता, क्रोध तो नहीं करता, रॉयल्टी कितनी है रॉयल बच्चों में, कि चलन रॉयल होनी चाहिए, वो शास्त्र शास्त्रार्थ तो नहीं करता। आज बोला ना बाबा ने, वाद विवाद लाठी भी मारने लग जाते हैं उसमें, पहले मानो हम जो बोल रहे हैं वही राइट है। और अपना सूक्ष्म, अभी ये तो मुरली के थे, सूक्ष्म प्रश्न है बहुत, इस दर्पण में क्या क्या देखना है, अपनी कमियों को देखना, अपने संस्कारों को देखना, क्या संस्कार है वही देखना पहले, तो परिवर्तन तो बाद, पहले अपने संस्कार ही हमें पता नहीं, हमें अपने ही संस्कार नहीं पता, किस परिस्थिति में हाउ आई विल रिएक्ट, किस परिस्थिति में कौन सा संस्कार कब कैसे किस रूप में सूक्ष्म रूप से बाहर आ जाता है हमें ही नहीं पता, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है हमारे अपने संस्कार कि हमें पता ही नहीं वो कैसे है, क्या है, मैं कौन, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे पास जो हाथ में है, ऊपर का स्वरूप हाथ में है, वो तो बुखार आ रहा है, पर बुखार आ क्यों रहा है, बीमारी अंदर है, हम बुखार को ही ठीक कर रहे हैं बस, क्रोध के ऊपर काम करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका जन्म कहां से हो रहा है, वो जो जन्म का जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं गुप्त है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं, अंदर काम करना पड़ेगा, उसका उद्गम स्थान क्या है, कहां से वो संस्कार उदय होता है, तो अपने संस्कारों को देखना है एक, और कहां जाना है, कहां मैं खड़ा हूं, कहां तक पहुंचा हूं, कहां से चला हूं, यहां से चला था कहां तक आया हूं, क्या क्या और कितना पार करना है, और कहां मैं कहां जा रहा हूं, ये प्रश्न है ना, एक सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, मैं कहां जा रहा हूं, ये प्रश्न स्वयं से पूछना है। पाश्चात्य जगत में एक बहुत बड़ा आर्थर शोफेनर करके हुआ है, शोफेनर बहुत बड़ा विचारक दार्शनिक है जर्मन, उसने अपनी आत्मकथा या अपनी जीवन कहानी में एक जगह लिखा है कि मैं एक बार सुबह सुबह एकदम सुबह, अभी सूरज भी नहीं उगा था, अंधेरी रात ही थी, तो मैं एक बगीचे में गया और उस बगीचे में गया, वहां थोड़ा बैठा, थोड़ा घूम रहा था, तो वहां का जो माली है वो जाग गया, उसने एकदम कहा, कौन है, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या चाहिए। वो माली उस शोफेनर से पूछता है, शोफेनर इज नो इज एज इफ अ पेसिमिस्ट, नास्तिकवादी बताया गया, बट बहुत बड़ा विचारक है, उपनिषदों की उसने बहुत बड़ी स्टडी की है, जिसने जिसका एक फेमस स्टेटमेंट है, उपनिषद आर द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड शैल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। उपनिषद जो है बहुत बड़ा मेरे जीवन में कंफर्ट है, दिलासा मुझे दिया है उपनिषदों ने, ऐसा ये शोफेनर के जीवन में है कि उसको वो माली पूछता है, कौन हो, अंधेरी रात है, दिखाई नहीं दे रहा है, माली को पता है कोई है वहां, वो पूछता है कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, कहां जाना है, वो कहता है यही तो प्रश्न मैं जानना चाहता हूं, यही तो मुझे पता नहीं है जीवन में कि मैं हूं कौन, आया कहां से हूं, जाना कहां है और करना क्या है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किस लिए, दादी के ये जो तीन प्रश्न है इसमें सब कुछ समाया हुआ है, मैं कौन, मेरा क्या, मैं किस लिए, मुझे करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस धरातल पर मैं क्यों आया हूं, भागने के लिए आया हूं संसार की प्राप्तियों के लिए कि अध्यात्म प्राप्ति करने आया हूं, खाली होने आया हूं भरने आया हूं, संगम युग है, लास्ट संडे की मुरली, उतारने का, बोझ उतारने का युग है, चढ़ाने का नहीं है ये, तो ये संसार का बोझ कहो, संसार की समस्या है, ये सब जो बोझ है, बंधन है, ये बंधन बंधने के लिए आए नहीं आए हम, जो बंधन है उनसे ही तो मुक्त होना है, अभी नए फ्रेश बॉन्डेजेस निर्माण नहीं करने, जो है वो उससे ही तो मुक्त होना है, और संसार में ज्यादा इन्वॉल्व होकर और नए बॉन्डेजेस क्रिएट करना, ये संगम युग पर होशियारी नहीं है, बच्चे होशियार क्यों है, दूसरा प्रश्न है एक उस मुरली में। तो कहाँ थे हम? नॉलेज के दर्पण में क्या क्या देखना है? तो अपने संस्कारों को देखना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ तक आया हूँ यात्रा में, कितनी यात्रा और बाकी है, और मैं थक अगर गया हूँ तो क्यों थक रहा हूँ इस यात्रा में? क्या मेरी गति और संसार की आत्माओं की गति वही तो नहीं है जो आज की इसी मुरली में कहा, दुख दर्द के कारण थकी हुई है आत्माएं? इसके लिए दो इच्छाएं हैं उनकी, क्या मैं और वो एक जैसे तो नहीं? और क्या देखना है इस दर्पण में अशोक भाई? नॉलेज के दर्पण में क्या देखना है? बाप समान कितनी बन गई हूँ, और क्या देखेंगे?
बाल कहाँ तक
नहीं, धूप में बाल कितने सफेद किए, मतलब परिपक्व कितने हुए हुए, अनुभवी कितने हुए हैं इस जीवन में, और अपने दर्पण में क्या देखना होता है?
अपना चेहरा देखना होता है
देख ले प्राणी,
कितने
पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं, पाप का खाता कितना है, पुण्य का खाता कितना है,
कितना
सुख दिया आत्माओं को, कितना दुख दिया आत्माओं, कितनी हिंसा की, हिंसा की कितनी सर्वश्रेष्ठ परिभाषा बाबा ने अभी अभी जो मुरली पढ़ी गई 19th अप्रैल 1971 मुरली 18 है कि 19th 19th आने वाली है, त्याग तपस्या और उसकी परिभाषा, तो 18th अप्रैल की जो मुरली है बाबा ने दो परिभाषा दी है उसमें, हिंसा अर्थात अपने शब्दों से किसी की ईश्वरीय स्थिति को डगमग करना, यह है हिंसा। दूसरा, अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कारों को दबा देना, यह भी हिंसा है। ऐसी परिभाषा कहीं पर भी नहीं है अध्यात्म में, कहीं भी किसी भी लिटरेचर में नहीं है। जैन धर्म में भी हिंसा की 400 से अधिक परिभाषाएं दी है, पर ऐसी परिभाषा नहीं दी है। जैन धर्म में 5 महाव्रत में एक महाव्रत है अहिंसा, उसमें हिंसा की 400 प्रकार की हिंसा है, परंतु ऐसी परिभाषा कहीं पर भी नहीं है कि शब्द से किसी की ईश्वरीय स्थिति, पहले तो ईश्वरीय स्थिति क्या है वो उनको पता ही नहीं है, किसी की ईश्वरीय स्थिति डगमग कर देना, यह हिंसा है। और अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कारों को स्वयं दबा देना, ये जैसे कि ये तो ये है हिंसा है, आत्मघात कहो जीवघात कहो, बाबा कहते हैं आत्मघात भी कहेंगे इसको, आत्मा का घात हो रहा है यहाँ। वैसे आत्मा का घात तो कभी होता नहीं है, परंतु ये जीवघात है। हाँ, ईश्वरीय स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, महान स्थिति, ईश्वरीय नशे पर आधारित बनाई हुई किसी की ईश्वरीय स्थिति, मतलब उसके लिए वो यहाँ की सबकी बात की है बाबा ने, ब्राह्मणों की बात की है, तो आत्महत्या करो, आत्मघात कहो वो। और तो ये भी देखना है कितना हिंसक बने, हिंसा तो नहीं की कोई, अहिंसक कितने हैं, चोरी कितने, अचौर्य चोरी तो नहीं कर रहे, अचौर्य का गुण कितना धारण किया है, अपरिग्रह का गुण कितना धारण किया है, अकाम कितने बने हुए हैं, कितना काले से गोरा, श्याम से सुंदर, रंग से राव, वो सारे शब्द उसमें आएंगे। तो स्वयं स्वयं को देखना, यह सबसे बड़ा अध्यात्म अर्थात अपने को देखना, बाहर से दृष्टि को हटा लेना, अंदर अंतर्मुखी हो जाना अर्थात अध्यात्म, यही उसका सार है। नेक्स्ट, छोटी छोटी कौन सी बातें याद रखनी है, ये कौन सा, वही है, अच्छा वही हो गया। सेकंड में शफा देने वाली गोली कौन सी हो सकती है, ये तो जबरदस्त चिंतन का प्रश्न है, ये डॉक्टरों का मामला है। छोटी छोटी नहीं, सेकंड में शफा देने वाली गोली कौन सी हो सकती है, स्थिति की, उनकी स्थिति ही गोली का काम करती है। एक जगह गोली बोला, एक जगह गोला बोला मुरली में, गोली डॉक्टर के लिए बोला, गोला कृष्ण के लिए जो उसके हाथ में है गोला, उसके लिए बोला। हाँ, तो गीत हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, और एक सेकंड में बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। थोड़ी और दूसरी बातें, सेकंड में शफा देने वाली गोली, गोली कहो या साधन कर लो, सेकंड में सेकंड को हटा दो, शफा देने के लिए क्या क्या करें, क्या करें? छुट्टी, खुशी, पेशेंट को खुशी के झूले में, ये एक दूसरा प्रश्न है, ये और ये लगभग समान प्रश्न है, पेशेंट को खुशी के झूले में कैसे झूलाए, तब कहीं वो माने कि ये अवतार है, तब कहीं माने ये भगवान है। नहीं, वो तो बहुत कुछ जो नहीं बोला वो सब खाना चाहता है। उसकी बीमारी ठीक कर देना है, ठीक है, ये भी अच्छा है। बीमारी तो ठीक नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बाकी सब दे रहे और बीमारी ठीक नहीं कर रहे। तो पहले स्थूल दवाई देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये सूक्ष्म दवाई। एक तो है कि किसी को शफा देने वाली गोली, इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के, ये बहुत सूक्ष्म प्रश्न है, इसको हटा के खाली शफा कैसे दी जाए या राहत कैसे दी जाए आत्माओं को। एक तो उसकी स्थूल जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं वो, दूसरा उनकी केयर करना, अटेंशन देना, प्यार देना, उनकी सुनना, सुनने वाला ही कोई नहीं होता है, उनकी हैबिट, हॉबी क्या है, हैबिट क्या है, उनका रिलीजियस डिजायर्स क्या है, धार्मिक इच्छाएं क्या है, क्या किसी धार्मिक गुरु से मिलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ये सारी भी बहुत सूक्ष्म इच्छाएं होती है, एक मरीज की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनेगा, उसको कोई लेना देना नहीं, वो मरीज है, उसमें तो कोई भी अपनेपन की भावना उसे देना, वो जिसका जिसमें फेथ है उसी आधार से उसको सुख देना, हाँ उसको तृप्त करना है। वो कहाँ, अभी जीवन भर नहीं सुना, अभी कहाँ सुनेगा। आत्मिक प्रेम देना, स्नेह देना, सहयोग देना, मदद करना, केयर करना, केयर मतलब स्थूल केयर, क्या क्या चाहिए उसे, स्थूल चीजें, तो हर प्रकार से उनकी सेवा करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न है, सेकंड में शफा देने वाली गोली उनको सेकंड में चाहिए और सदा के लिए चाहिए, दो इच्छाएं है आत्माओं की, समय और सरकमस्टांस अनुसार, क्योंकि बहुत दुख दर्द में है। इसके लिए मेडिटेशन का कोई नया तरीका निकालो बाबा ने कहा, केवल भाषण तो वो बहुत सुन लेते हैं, भाषण सुनते, एग्जीबिशन देखते, परंतु चाहिए उनको ये सेकंड में शफा, शफा अर्थात राहत। वैसे उर्दू शब्द शिफा है, शिफा नामा कहते हैं, परंतु शफा काफी प्रचलित शब्द है, परंतु ओरिजिनल शब्द शिफा है, शिफा नामा, शिफा खाना, अस्पताल को उर्दू में शिफा खाना कहते हैं, तो शिफा खाना, शिफा देना किसी को, शिफा याब इस तरह, पता नहीं, परंतु काफी प्रचलन में है ये शब्द शफा, सारी दादियां शफा ही कहती है, शफा ही सुना है, परंतु ओरिजिनल हिंदी जो है, उर्दू जो है, उसमें शिफा शब्द है। अच्छा, शिफा नामा, शफा याब। तो उनको राहत मिल जाए बस, और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म गोली है दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि, तीन साक्षात्कार, उनको साक्षात्कार कराना, अनुभव कराना, ये सारी चीजें वहां करानी है, हमारे नैनों से, हमारे मस्तक से, और लाइट का ताज। आगे मुरली में कहा है ना, अंधकार है, इस अंधकार में किरणें केवल आपकी है, ज्ञान की, गुण की, शक्तियों की, लाइट, लाइट हाउस का काम करेगी ये किरणें। तो उत्तर तो है दृष्टि का, और सेकंड में शफा प्रेम से हो सकता है, पवित्रता की किरणों से हो सकता है, सुख की किरणों से, शांति की किरणों से, ये सब किरणों से। सर्व आत्माओं की दो इच्छाएं कौन कौन सी है, सुख शांति की, और दो इच्छाएं, स्थूल दवाई, रूहानी दवाई, और दो इच्छाएं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की, और जीवन मुक्ति की, और दो इच्छाएं आत्माओं की, मेरे से अच्छा बोला जाए, मेरी तारीफ की जाए, मेरी केयर की जाए, मेरी अटेंशन दिया जाए, मेरे को सुना जाए, सुनता ही नहीं है कोई,
प्यार की इच्छा,
प्यार प्रेम की इच्छा, और बिलोंगिंग अपनापन। हर चित्र में कौन सा सार भरना है, कौन कौन सा सार भरना है चित्रों में?
चैतन्यता
का, रूहानियत का, वही रूहानियत और चैतन्य का वो सार, कि ऐसा सार भरना है कि सबका अटेंशन जाए और सुख और शांति की अनुभूति यहाँ होती है, ये सार भरना है। अभी आवश्यकता अनुसार क्या देना है और कैसे देना है, आवश्यकता अनुसार क्या देना है कैसे देना है, पॉइंट देना है, पॉइंट देना है, शॉर्ट में देना है वो भी। तो और एक लाइन है वहां पर, तो क्या होगा, पॉइंट बनना है, पॉइंट देना है, और एक लाइन है वहां पर एक छोड़ के। डॉक्टर से मुलाकात उसके आगे एक लाइन छोड़ के एक लाइन,
शक्तिशाली स्टेज पर लाओ।
हाँ, स्वयं भी शक्तिशाली स्टेज हो और दूसरों को भी शक्तिशाली स्टेज पर खींचना, बहुत पावरफुल वो पॉइंट है। स्वयं शक्तिशाली स्टेज पर है और दूसरों को शक्तिशाली स्टेज पर खींचना, पॉइंट बन के पॉइंट देना। अब आवश्यकता है पॉइंट बनकर पॉइंट देने की, वो भी शॉर्ट में देने की। हाँ वो, हाँ फेथ वाले भी पॉइंट है वहां पर। अभी आवश्यकता अनुसार ये कर्म भोग और कर्मयोगी बनने के लिए कौन सी दवाई, स्थूल और रूहानी दवाई। अंत में कौन सी सेवा होगी,
दृष्टि
की सेवा, वाइब्रेशंस की सेवा, मनसा सेवा, वायुमंडल को, वायुमंडल से सेवा, वृत्ति से सेवा, और टेम्पररी वरदान शांति का देना है आत्माओं को। बाप समान शक्ति दिल तख्त पर बैठकर आत्माओं को वरदान देना, ये भी एक जगह का है। अभी अभिमान के कारण क्या कहते हैं, या तो आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है। और एक पेशेंट होता है, वो डॉक्टर को जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूँ, क्या करूँ, मुझे कोई ट्रीटमेंट दो ना। तो डॉक्टर पूछते कब से लगता है, वो कहता है जब से इस दुनिया को मैंने बनाया तब से। अभिमान के कारण क्या कहते हैं डॉक्टर लोग, एक दूसरा चिंतन का विषय दे रहे हैं। अभी उत्तर यहाँ नहीं देंगे, कल की क्लास में उसका उत्तर। डॉक्टर लोग को अहंकार किस किस बात का होता है, अकड़, 10 पॉइंट चाहिए। डॉक्टर मेधा, डॉक्टर लोग अहंकार अकड़ कौन कौन सी बात की होती है? डॉक्टर आनंद, डॉक्टर्स को अकड़ कौन कौन सी बात की होती है?
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हूँ।
अकड़ होती है, और वो अभिमान और वो अकड़ का निर्माण किस तरह, आधार क्या है, कैसे निर्मित हुआ है? मैं सेकंड भगवान हूँ, आई एम गॉड। एक चित्र है ना डॉक्टर का, नीचे दिखा रहता है आई एम गॉड। मैं जस्ती नहीं, आज नहीं कल बताएंगे इसकी, इसकी चिंता, इसके चिंतन कल करेंगे, आज नहीं। तो डॉक्टर्स को अभिमान कौन कौन सी बात का होता है, 10 पॉइंट। ये पावरफुल प्रश्न है, इसके ऊपर कल चर्चा होगी। हाँ, गुस्सा तो बहुत करते हैं। अच्छा, अभी अभिमान के कारण क्या कहते हैं, कोई दवाई ये सब, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, नई बीमारियां क्या लाएगी, हो गया। आने वाली आत्माओं को वरदान कैसे देंगे आप, आने वाली आत्माओं को वरदान, दिल तक तो नशीन बाप के साथ बैठेंगे और आत्माओं को वरदान देंगे। पेशेंट को सदा खुशी के झूले में कैसे झूलाना, ये चिंतन का विषय है, इसमें टाइम नहीं मिला सोचने के लिए। डॉक्टर आनंद क्या करे, पेशेंट को खुशी खुश कैसे करे, प्रेम दे, और उनको टाइम, सबसे मेन है टाइम, उनको टाइम देना, ये बहुत बड़ी चीज है। उनको लगे कि अपनापन अपना लग, अपनापन लगे उनको। और
बताना ये बीमारी तो खत्म हो जाएगी
तुरंत। एक पेशेंट होता है, एक पेशेंट होता है वो बाबा भगवान डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है मुझे सिर दर्द है, मुझे पेट दर्द है और मुझे पसीना नहीं आता है, मेरी बहुत सारी कंप्लेंट बताता है। अब सारी फिर नेक्स्ट विजिट में कहता है बाकी सारी कंप्लेंट तो ठीक हो गई, एक बची, एडमिट करते हैं उसको, बाकी सारी कंप्लेंट ठीक होगी, एक ही कंप्लेंट है कि पसीना नहीं आता है, उसका कुछ करो। बोले उसकी चिंता ना करो, बिल देखोगे तो वो भी आ जाएगा। एक पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है वो खुद ही बुजुर्ग होता है 60 साल का, उसके पिताजी होते हैं 80 साल के, वो कहता है कि मेरे पिताजी जो है ना 80 साल के बूढ़े हो गए, दिन भर वो बाथरूम में बैठे रहते हैं वो टब में पानी के, और वो खिलौने से खेलते रहते हैं, कुछ करो, ये क्या है, दिन भर बाथरूम में बैठे रहते और टब में पानी के टब में बैठे रहते और खिलौने से खेलते रहते। डॉक्टर समझाते रहने दो ना, क्या है वो बूढ़े हैं, क्या करना है, करने दो उनको जो करना है, किसी को तकलीफ तो नहीं देते ना, पानी इधर उधर तो नहीं करते। वो कहते नहीं वो सब कुछ नहीं करते, पर मैं कब बैठूंगा फिर, मुझे भी तो खेलना है। मेरा क्या पेशेंट, हाँ और क्या करे खुश करने के लिए, डॉक्टर निमेद है पेशेंट को खुश करने के लिए क्या करे,
चुट
उनको एक चुट किला, उसके बीमारी को थोड़ा छोटा बना दो,
बीमारी का वर्णन
ज्यादा वर्णन नहीं करना। हाँ नहीं और हाँ बीमारी आई और चली गई, और उनको गिफ्ट देने का थोड़ा चॉकलेट विकलेट देने का। हाँ एक पेशेंट होती है वो जस्ट मरने को ही होती है, तो उसको एकदम से साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार में भगवान स्वयं आते हैं और भगवान उसको कहते हैं कि अभी और तू 40 साल 6 मास तक और जीने वाली है, और वो ठीक हो जाती है। साक्षात्कार होता है, डॉक्टर्स उसे बचा देते हैं। अब वो फिर वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाती है, आईसीयू से वार्ड में जाती है, फिर सब ठीक होता है, तो वो सोचती है कि अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और भगवान ने कहा है कि 40 साल और जीना है। तो वो बहुत मोटी मोटी सी रहती है, तो वो अपने बहुत सारे ऑपरेशन वगैरह करा देती है, एक प्लास्टिक सर्जरी करा देती है, फेसलिफ्ट सर्जरी, टमी टक सर्जरी, पेट कम करने वाली सर्जरी, सुंदर बना देती है अपने आप को, और ऐसे दो तीन क्योंकि भगवान ने कहा और 40 साल तो है, और तो पहले तो उसने छोड़ दी थी, आशा ही छोड़ दी थी कि अभी मैं ठीक हो जाऊंगी, और हॉस्पिटल से मतलब वो तो मरने वाली थी पर और रुक जाती है, और ये सारे ऑपरेशन करा के एक मास के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, बहुत खुशी खुशी से एकदम बन ठन के अपनी कार में जाती रहती है, और हॉस्पिटल कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। तो सीधा पहुंचती है भगवान के पास, तुमने कहा था कि मैं 40 साल और 6 मास जीऊंगी, फिर मेरा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुमने मुझे हाथ पकड़ के खींच क्यों नहीं लिया कार से। वो कहते मैं कैसे करूं, मैंने पहचाना ही नहीं तुमको। तो पेशेंट को सदा खुशी के झूले में कैसे झुलाना है। कौन सी शक्ति किसके आगे झुकेगी और क्या झुकेगी, साइलेंस और साइंस की बात या की, एटम एटम की बात किया है, उन्होंने एटम भी हमारे आत्मिक शक्ति से निकाला, नई बात कह दी एकदम, वो नहीं होता तो ये नहीं होता। तो इस शक्ति के आगे वो भी ढूंढेंगे एक दिन कि नजर कहाँ ढूंढेंगे, फिर आप नजर आपकी किरणें उन्हें नजर आएगी। वो एक झुके भी झुकेंगे क्या नहीं, साइलेंस की शक्ति, साइंस और साइलेंस की बात है यहाँ पर, झुकने वाली बात,
अनुभव के आगे भी झुकेगी,
अनुभव के आगे, इस मुरली में बोला वो आगे बोला है, देखो
पहले का ही
अनुभव, उसके बाद में यहाँ पे आए। वो विदेशियों से बोल रहे हैं ना, विदेशियों के भी अनुभव अच्छे हैं। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तो क्या दिखाई देगा?
अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं।
हाँ, फॉरेनर की बात है। जब चारों ओर अंधकार क्या कहा छा जाएगा तो क्या दिखाई देगा? आपकी किरणें, हमारी किरणें, सूक्ष्म नहीं ज्ञान गुण शक्ति हो, नॉलेज गुण शक्ति है, लाइट लाइट। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहने से क्या क्या होगा, ये चिंतन का विषय है। सेफ रहेंगे। यहाँ उदाहरण दिया है गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन के नीचे थे तो क्या क्या हुआ गोप गोपियों का? पहले तो वो स्वीन लाओ। इंद्र ने वर्षा की बहुत सारी, इंद्र की पूजा नहीं की उसने, बहुत वर्षा की, फिर इसने 7 दिन तक उठा लिया पर्वत को, तो क्या क्या हुआ? संकट से रक्षा हुई, सब सुरक्षित रहे, सेफ हो गए, और हलचल शांत हो गई, परिस्थिति खिलौना बन गई, अहंकार टूट गया। हाँ, उनको संघ का अनुभव हो रहा था, हम किसके साथ है, समीपता का अनुभव। और उनको भी लगा, हर एक जन अपनी अपनी लकड़ी लेकर भी खड़ा था, उनको लगा देखा हम उठा रहे हैं, ये एक दूसरी चीज है। हर एक को लगा देखो मैं इतना बड़ा पर्वत उठा रहा हूँ, लूटा वो रहा था, पर हर एक ने ये सोचा कि मैं उठा रहा हूँ। परंतु हाँ, कथाकार जो करते हैं कथा, भागवत कथा, वो पूछते हैं प्रश्न कौन उठा रहा था, तो उत्तर में दिया जाता है किसने उठाया, राधा की दृष्टि से सारा पर्वत उठा, ऐसा उत्तर वो लोग देते हैं कि राधे राधे वाले होंगे वो देते हैं, जो कृष्ण राधा को राधा रानी कृष्ण से भी ऊंचा समझते हैं। हाँ, क्योंकि राधा नहीं तो कृष्ण भी नहीं। जैसे हम यहाँ ओम शांति कहते हैं, वो एक दूसरे से मिलते तो राधा राधे राधे कहते हैं। हाँ, कंस को उधर इन्फॉर्मेशन तो मिल गई ना, इसमें भी इन्फॉर्मेशन तो इधर मिली, पर इंद्र को जो भड़काने वाला था वो यहाँ नारद था, उसने जाके भड़काया था। इधर से स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट जो है ना, स्पिरिचुअल जर्नलिज्म, तो वो उसने जाके बोला था कि ये ऐसा किया है, और वो अभी सब लोग तुमको छोड़ के उसकी पूजा भी चालू कर सकते हैं। तुरंत यहाँ से वहां खबर देकर उसको भड़काया। तो छत्र छाया के अभी इस मुरली में आ जाओ। छत्र छाया में रहने से क्या होता है? व्यर्थ से मुक्त होता है, ये अनुभव होता है कि भगवान मेरे साथ है। बाप का साथ वंडरफुल बात, बाप का साथ वंडरफुल बात, तो ये अनुभव होता है कि वो मेरे साथ है, उसकी छत्र छाया, मैं सुरक्षित हूँ, महफूज हूँ, निश्चिंत हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, परिस्थितियाँ, विघ्न, माया, सब खिलौने हैं, मरी हुई चींटी है, कागज के शेर है ही नहीं, सूली काटा, और प्यार का अनुभव, साथ का अनुभव, मदद का अनुभव, समीपता का अनुभव, शक्ति का अनुभव, खुशी का अनुभव, वो सारे अनुभव छत्र छाया में, कि वो साथ है। एक छोटा सा वाक्य है परंतु बहुत शक्ति है इसमें, हम अकेले नहीं है। कोई भी समस्या आने से स्वयं कमजोर क्यों बन जाते हैं, ये प्रश्न पूछा है बाबा ने। कोई भी समस्या आती है तो बाप को भूल जाते हैं, परिस्थितियों का ही चिंतन करते रहते हैं, समस्याओं का ही चिंतन करते रहते हैं। मुरली सबसे पहला काम करते हैं, मुरली छोड़ देते हैं, सोचते अभी समस्याओं का चिंतन करते हैं, थोड़ा समस्याओं को ज्यादा टाइम देते हैं, ज्ञान चिंतन को टाइम कम देते हैं, सोचते ये तो हमेशा कहिए, रोज रोज कहिए, पता ही तो है, वो ही छोड़ते समस्या आने के बाद। ये सूक्ष्म पॉइंट है बहुत, कि समस्या आती है सोचते अब इसको टाइम देना चाहिए, इसकी मीटिंग करो, डिस्कशन करो, डिस्कशन करो, बैठो, उसके बारे में सोचो, टाइम दो, एनर्जी दो, सब दो, और वही पीरियड में ज्ञान युग छुपता है। संघर्ष, उस दिन भी चर्चा कर रहे थे ना, परसों सुबह, संघर्ष करने में लग जाते हैं, और उस खुद जो बीच की अवस्था है वो छूट जाती है। तो कोई भी समस्या आने से स्वयं कमजोर, क्योंकि समस्याओं का चिंतन करने से, एक तो बहुत ज्यादा चिंतन करने से, व्यर्थ चिंतन करने से, अनुमान लगाने से, निगेटिव सोचने से, समस्या उसमें कमजोर क्यों बनते, स्वयं को भूल देते, भुला देते हैं, दिनचर्या को सेट, अपने सामान को ही भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, और भक्त बन जाते हैं, बाबा से प्रार्थना करने लगते हैं, बाबा इसको ठीक करो उसको ठीक करो, हीन भावना भी आ जाती है, मैं क्या क्या करूं, सब मेरे साथ ही क्यों होता है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही, ये इन लोगों के साथ तो कुछ होता ही नहीं, ये तो आराम से रहते हैं बड़े मजे से, इनके साथ तो कभी कोई समस्या ही नहीं आती, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा, हमें क्यों कम दिया जाता है कुछ, हमें क्यों बोला जाता है ये भी लेट आते, हमको क्यों नहीं? कोई कुछ उनको कोई नहीं कुछ बोलते, प्रभाकर भाई बराबर है ना। संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार क्या है, बहुत सारा हो सकता है श्रृंगार, क्या क्या है, ज्ञान गुण शक्तियां छोड़कर, ज्ञान गुण शक्तियां छोड़कर बताओ, पवित्रता श्रृंगार है, मीठे बोल, शुभ भावना, शुभ कामनाएं, दुआएं, श्रेष्ठ कर्म, खुशी, नियम मर्यादाएं, संतुष्ट रहना और दूसरों की केयर करना, हमारा श्रृंगार है। और राजेश भाई श्रृंगार क्या है ब्राह्मणों का, अंतर्मुखी रहना, इच्छा मात्रम अविद्या। और शिवानंद भाई ब्राह्मणों का श्रृंगार, दैवी गुण नहीं, गुण ज्ञान शक्तियां छोड़कर। आशीष भाई हर्षित मुख, हर्षित मुखता, सारे दिव्य गुण में तो आप एक एक बिनाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे सारे, वो दिव्य गुणों में नहीं है क्या, माया असोज बन जाओ, निश्चिंतता, दिव्य गुणों में आ गया सारा। मधुबन में रिफ्रेश होने से कौन, मधुबन में रिफ्रेश होने के कौन कौन से साधन है, ये चिंतन का विषय है, बहुत पावरफुल प्रश्न निकाले आपने, इतने पावरफुल है क्योंकि ये बात तो जस्ट एक बाबा ने ऐसे ही कह दिया, लाइब्रेरी पहला नंबर, अच्छा पहला नंबर लाइब्रेरी, बाबा का कमरा और चार धाम, ब्रह्मा भोजन और
जगह
हाँ, ये स्लोगन लगे जगह जगह जो स्लोगन लिखे हैं ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ो उनको, क्या लिखा है, हाँ मधुबन निवासियों से मिलना, मधुबन में आना, मधुबन निवासियों से मिलना और चार धाम की यात्रा, रिफ्रेश किस किस से होते हैं, होने के साधन क्या है, साधन मतलब स्थूल साधन बनाओ, वाइब्रेशन होने साधन, पिक्चर्स, स्लोगन, मुरली, टोली, ब्रह्मा भोजन, लाइब्रेरी, मीटिंग,
एक दूसरे मिलना,
अनुभव, एक दूसरे मधुबन निवासी से मिलना और बाबा की जीवन कहानी से क्या, बाबा की जीवन कहानी याद कर लेना, ठीक है, और यहाँ की प्रकृति, मधुबन की हिस्ट्री जानना से रिफ्रेश होते हैं, और इधर भी आना थोड़ा बीच बीच में, इधर भी आने से तो होता है, थोड़ा तो होगा ही 1%, और झील के मधुबन, अच्छा और रिफ्रेश, मधुबन का आंगन, मधुबन में आंगन बैठ के क्या आनंद मिलता है, आंगन में क्या आनंद है, देखना आत्माओं को आते हुए जाते हुए, आ रहे जा रहे, ये है महान आत्माएं, ये है मंदिरों में जो जिनकी पूजा हो रही है वो देवियां यहाँ घूम रही है, मंदिर उधर खाली पड़े हैं, ये है देव, ये है हनुमान, ये है गणेश, ये है बाप, हाँ बाप का संघ, यहाँ पर आते ही बाप का संघ जो है वो उसकी जो स्मृति है वो ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, वहां जाते ही थोड़ी कम हो जाती है, संसार में जाते ही, वहां जाते ही उधर का वाइब्रेशन, यहाँ जाते इधर का वाइब्रेशन, यहाँ आते इधर की दिनचर्या, वहां जाते उधर की दिनचर्या, किसमें ऐसा भी नहीं, और मधुबन के फूल उसका क्या, रिफ्रेश बाबा का झूला और
बलून की ट्रांसपोर्ट गाड़ी में बाबा की गाड़ी आ रही है
बाबा की गाड़ी आ रही है गाड़ी जा रही है मधुबन का पानी इधर से पानी भर के ले जाते हैं मिट्टी मधुबन की मिट्टी धन्य भूमि ये धन्य है भूमि मधुबन की और वो चार धाम में आ गया अपना कमरा मधुबन में अपने को मिला हुआ कमरा ठीक है मधुबन की टोली बोल दिया हाँ नहीं नहीं स्थूल बातें गीत गीत किताबें गीत और ओम शांति भवन ओम शांति भवन और ओम शांति भवन की मुरली और यूज की हुई चीजें और
अभी इस क्लास में चिंतन जो चल
रहा है वो चिंतन भी याद आएगा क्लासेस हिस्ट्री हॉल की फोटोज संदली और चाय अमृत तो रिफ्रेश करती है बिना किया हुआ सब मिल जाता है आराम से और चित्र पिक्चर फोटो और सैंडविच फ्री ट्रांसपोर्ट फ्री एकोमोडेशन फ्री फूड वाईफाई हाँ एक पेशेंट होता है वो उसको उसके मित्र कॉलेज के मित्र लेके आते हैं फटाफट इमरजेंसी में डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ वो कहते हैं कुछ नहीं डॉक्टर साहब फेसबुक का मरीज है चार दिन से नेट बंद है और मधुबन की नहीं क्या रिफ्रेश कराता है अच्छा ये तो स्थूल हो गया सूक्ष्म में क्या रिफ्रेश कराता है सबसे पहला तो ज्ञान की स्मृति ज्ञान का जागरण परमात्मा प्रेम मधुबन निवासियों का संग और यहाँ का वाइब्रेशंस वायुमंडल संग दादियों का संग और यादें वो प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई यज्ञ हिस्ट्री वो सारी चीजें यहाँ के वाइब्रेशंस मतलब वो क्योंकि पुराना जो स्मृति है यहाँ आए फिर यहाँ से चले गए ठीक है फिर यहाँ आए तो वो जो स्मृतियां है वो एकदम जागृत होती है कई लोग जैसे आने लगते हैं ट्रेन से ट्रेन के वहीं रहते अभी मधुबन पहुंचे ही नहीं है वहां से ही आंखों में आंसू आने चालू हो जाते हैं जैसे पहाड़ियां दिखाई देने लगती है ठंडी ठंडी हवा आने लगती है आंखों से आंसू आने लगते हैं पुरानी यादें आने लगती है गीत याद आते हैं कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है सारे जहां से अच्छा हाँ दिव्य फरिश्तों का ये मधुबन शिव बाबा का प्यारा तो ये सारे मधुबन के संबंधित जितने गीत है वो सारे गीत याद आने लगते हैं तो ये सारी चीजें हो जाती है ब्राह्मण परिवार के बीच में है उसकी खुशी और एक प्रोटेक्शन का माहौल होता है यहाँ पे संसार में प्रोटेक्शन नहीं मधुबन में रहना मधुबन में आना अर्थात सुरक्षा किला है ये इस किले में विकर्म नहीं हो सकते जो कि बाहर विकर्म होते रहते हैं इस किले में घेराबंदी है यहाँ पर वाइब्रेशंस की तारबंदी घेराबंदी सब है यहाँ तो यहाँ पर विकर्म नहीं होते बाहर विकर्म होते हैं कोई ना कोई विकर्म मनसा वाचा कर्मना और यहाँ पर अगर स्थिति गिर भी जाए रिकवरी पीरियड फास्ट है उधर स्थिति अगर गिर जाए रिकवरी पीरियड 3 दिन से लेके 3 मास से लेके 6 मास भी हो सकता है रिकवर वापस वही स्थिति में पहुंच जाना जिस स्थिति में थे वहां गिरने के बाद फिर उसी स्थिति में आ जाना हाँ कोई कोई तो मुश्किल ही हो जाता है जीवन भर चल जाता है वो अगर वही वही होते रहा बार बार फिर तो हिम्मत भी कम हो जाती है पुरुषार्थ की भी हिम्मत कम हो जाती है सोचते अब नहीं होगा छोड़ो यहाँ संकल्प ज्यादा पूरे हो जाते हैं नेक्स्ट अंत में किस किस कार्य के लिए समय नहीं होगा एक तो यहाँ मुरली में बोला है जलाने के लिए दूसरे पुरुषार्थ के लिए समय नहीं होगा रोने के लिए भी समय नहीं होगा कोई मरा है तो किस किस के लिए रोए किस किस के लिए रोए, इसके लिए रोए कि उसके लिए रोए? एक राजा होता है, वो उसका एक एक ही बेटा होता है, वो मरते होता है तो मरना सन्न होता है, वो बेटा उसकी रानी वो सारा इतना चिंतित होता है, इतना चिंतित होता है, बस वो एक ही बेटा होता है, वो ही उत्तराधिकारी होना होता है। रात को जागते जागते हाथ फेरते फेरते राजा को नींद लग जाती है। राजा नींद में स्वप्न देखता है कि वो एक बहुत बड़े राज्य का एक बड़ा राजा बन गया है। ये तो छोटा राज्य था, बहुत बड़ा राजा, बहुत सारी रानियां, और उसके कम से कम 12 बेटे होते हैं वो स्वप्न में। और फिर वो स्वप्न चालू रहता है मीठा मीठा सा, तो फिर एकदम से आँख खुलती है तो देखता है तब तक उसका बेटा मर चुका है यहाँ वाला। तो वो अभी प्रश्न में पड़ता है, मैं किसके लिए रोऊं, ये एक मारा उसके लिए या 12 उधर जो चले गए उनके लिए? रो मैं किसके लिए, वो उसके लिए कि वो राज्य चला गया, वो 12 बेटे मर गए, या इसके लिए? तो किस किस के लिए समय नहीं होगा रोने के लिए? पश्चा वाचा कर, वाचा सेवा के लिए, कर्मना सेवा के लिए टाइम नहीं होगा, और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं, पर प्रश्न है किस किस के लिए समय नहीं होगा? पुरुषार्थ के लिए समय नहीं होगा। हाँ, कौन सा इलाज? अच्छा, ट्रीटमेंट करने के लिए समय नहीं होगा। योग के लिए तो बिल्कुल समय नहीं होगा। सेवा मनसा सेवा बस। मुरली से दस समय, एक मिनट, ये लास्ट, अल्लाह के बगीचे पर प्रकाश डालिए। कैसे प्रकाश डालेंगे? वहाँ क्या क्या होगा? अपनी किरने वहाँ डालनी है, या दूसरा अर्थ बोला है आपने कुछ? क्या चित्र है? तो
उसकी जीवनी पर प्रकाश डालिए।
बच्चे ने किया होगा किसी, अल्लाह के बगीचे पर प्रकाश डालिए। ये चलो इसको छोड़ देते हैं, इसमें तो पूरा सतयुग का वर्णन है। अभी है मुरली से दसवां मान, बताइए, 10 नहीं 20 बताओ। मैं नहीं, शुरुआत से चालू करो। मैं लवली आत्मा हूँ, मैं लवलीन आत्मा हूँ, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुश मिजाज आत्मा हूँ, बंधन बंधने वाली और बंधन में ऐसे बंधन में बंधने वाली और बंधन में बांधने वाली आत्माओं को ऐसे लवली अर्थात लवलीन आत्माओं को, बाप के गीत, बाप की महिमा के गीत गाने वाले खुश मिजाज आत्माओं को ऐसे, हाँ वो तो है, ऐसे चलो, खुशी के झूले में झूलने वाली खुश नसीब आत्माओं को, चार है समान या प्यार में, चलो तकदीरवान आत्माओं को, खुश नसीब आत्माओं को, नहीं आज के मुरली से, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुरली के शब्द चाहिए, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं रुणे रतन हूँ, आंखों का तारा हूँ, बाप के गले की माला का मणका हूँ, हाँ वो रूहे गुलाब में आ गया, अल्लाह के बगीचा का रूह गुलाब हूँ, और बंधन मुक्त आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी नहीं, मैं वो हूँ जिसके हाथ में गोला है स्वराज्य का, मैं हूँ वो जो गोली देने वाला है, और हाँ शफा देने वाला हूँ, और मैं रूहानी डॉक्टर हूँ, और वो जो तीन चार चीजें है ना, खुशी के गीत गाने वाला, प्यार के गीत गाने वाला, उमंग के गीत गाने वाला, ये हो गया गीत। फिर है खुशबू, तो वो हो गया फूल। फिर है झलक, तो एक रस स्थिति की झलक दिखाने वाला, एक बाप दूसरा ना कोई इस स्थिति में स्थित रहने वाला, और फिर वो चार चीजें वहां, वो उदाहरण है कृष्ण का, और अनुभवी मूर्त हूँ। अब फिर डॉक्टर्स का जो है उसमें, सबसे पहला 9 भाग में विभाजित करो डॉक्टर से मुलाकात, जो डॉक्टर से मुलाकात है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट इसको आज निकल लेंगे, छोड़ो सब आज हो जाएगा नहीं। डॉक्टर से मुलाकात है वो 9 भागों में विभाजित है, 9 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स है। हाँ, और सोमन, मैं ब्रह्मा कुमार कुमार हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, पवित्र हूँ और पवित्र आत्माओं के संग रहने वाली आत्मा हूँ, और गुड मॉर्निंग करने वाली आत्मा हूँ, सुबह उठकर याद करने वाली आत्मा हूँ, संदेश देने वाली आत्मा हूँ, और एक एक लाइन और एक एक समान दूर देशी हूँ। मैं श्रृंगारी मूर्त हूँ, सजी सजाई मूर्त हूँ, भाग्यवान हूँ, सोलह कला संपूर्ण सोलह वो सारा उसमें, और लाइट माइट लाइट हाउस हूँ। स्लोगन तो नहीं पड़ा। राजऋषि है, चलो मैं राजऋषि हूँ। तो ये मुरली अभी तो जस्ट शॉर्ट में चर्चा की है, कल ये मुरली सुबह चलेगी। इस मुरली को ध्यान से सुनना पहली बात, दूसरा उस मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है वो ध्यान रखना, ध्यान में रखना। अगर देखा जाए तो पूरी मुरली में जो मेन मुरली है उसमें एक ही चीज है उठाने वाली, बाकी तो बाबा ने मिल रहे देख रहे ये सब वर्णन है कि चित्र को देखना है, नॉलेज के दर्पण को देखना है कि कहां तक बना हूं। ये एक होमवर्क है बच्चों के, इसमें वो चार चीजें जो बच्चों को करनी है वो हमें करनी है, वो दूसरा होमवर्क है। तीसरा डॉक्टर्स के लिए जो जो कुछ कहा हुआ है पॉइंट देना, पॉइंट देख पॉइंट में स्थित होके पॉइंट देना, ये एक डबल शफा देना वो एक। उसके बाद में बाप के साथ रहना और वरदान देना आत्माओं को वो होमवर्क है। तो ऐसी जो भी इसमें बातें आई है उसमें से होमवर्क निकालना है, एक स्थिति एक बाप दूसरा ना कोई, केवल वो शब्द ना रह जाए, शब्द रह जाएंगे तो खो जाएंगे, वो शब्द अनुभव बन जाए, वो शब्द भी हमें याद रहे और वो अनुभव भी याद रहे, शब्द भी आवश्यक है। केवल एक बार पढ़ लिया और कहना हमें समझ गया वो काफी नहीं है, बार 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 सुबह एक बार पढ़ना, फिर सुनना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर रिवाइज करना, फिर कुछ पॉइंट्स निकालना, फिर कुछ होमवर्क निकालना, फिर से इन प्रश्नों को पढ़ना, और यहाँ जो चर्चा हुई है उसमें अगर कोई नई बात लगे उसको याद करने की कोशिश करना, ऐसा दिन भर करते रहना। और कुछ सुशील भाई, बहुत हो गया। राज्य में एडिशन क्या क्या, ओम शांति। हाँ
एक बहन
है
जो मतलब 30 बार पढ़ती हूँ।
अच्छा अच्छा,
वो उसको यहाँ से जाने के बाद उसको बताया था कि तुम तो घर में घुसने नहीं देंगे।
हाँ
लेकिन अभी भाई को फोन आया, बोला घर में
पढ़ा।